हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुमें गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। समय बहुत हो गया है और आप लोगों का दिन भर का परिश्रम भी है, साथ में आप लोगों ने गमन भी करना है। रात को रुकते तो और भी कुछ विचार किया जाता, और आज हम थोड़े से किसी जरूरी कार्य में व्यस्त होने के कारण हम भी थोड़े लेट उपस्थित हुए आपके समक्ष। लेकिन जो भी है, गुरु वैष्णवों की दया से आप सबका हम स्वागत करते हैं। आप कृपा करके इन बातों को, जो कुछ भी हम कहें, ध्यान से सुनिए। देखो, ये जो संसार है जिसमें आप सभी आज लौट करके वापस जा रहे हैं, ये कई बार ऐसी अनुभूति देता है जैसी अनुभूति कल यात्रा के समय में आपने की होगी, कि कल आप लोग जैसे ही थिएटर में प्रवेश किया आपने, तो आप लोगों को ऐसा लगा कि आप बद्रीनाथ आ गए हैं, और फिर 15-16 मिनट निकालना भारी पड़ गया था। सब लोग बार बार पसीने के शिकार हो रहे थे और थोड़ा सफोकेशन हो गया था। काफ़ी अरेंजमेंट था, दो दो एसी काफ़ी समय पहले से ही चालू थे, लेकिन फिर भी अचानक से फिर ऐसी स्थिति हुई कि यहाँ से कब बाहर निकलें। वो तो उस कष्ट को सहने की क्षमता थोड़ी रसखान जी के कारण हमें प्राप्त हो रही थी, है कि नहीं? अगर रसखान जी की वो लीला नहीं चल रही होती तो हम उस कष्ट को नहीं सह सकते थे। ऐसे ही आप लोग संसार में जाओ या संसार से बाहर आओ, वो संसार किसकी तरह है? उसी थिएटर की तरह है जिसमें घुसते समय ऐसा लगता, ओह कितनी बढ़िया जगह पे हम आ गए। चाहे वो ऑफिस में जाओ या मकान में जाओ या कहीं भी जाओ संसार में, ऐसा लगता है कि बच गए हम, हमारे भी मकान है, हमारे भी कोई सुनने वाला है, हमारा भी कोई स्वामी है, हमारा भी कोई नाथ है, नहीं तो हम भटक रहे होते अनाथ होकर के। अच्छा हुआ हम किसी के संरक्षण में आ गए, ऐसा समझते हैं ना? लेकिन वो संरक्षण किसी काम का नहीं होता। वहां पर इतनी लोग त्रस्त हो जाते हैं कि कई बार लोग बेचारे जान से हाथ धो बैठते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे को अपना दुखड़ा ही रोते रहते जीवन भर। आप देखो, सब रिश्तेदारियों में फोन लगा लगा करके यही काम होता और कुछ नहीं होता, अपना दुखड़ा ही रोते बस। और वो भी सोचते हैं जाएं तो जाएं कहाँ, जीना यहाँ मरना है, आदमी ऐसा सोचता है कहाँ जाएं। फिर वो चिल्लाता है आखिर में, पहले तो दुनिया में कूद के जाता है, फिर कहता है ये दुनिया, ये महफिल, सोचता है ये कोरा जीवन कोरा ही रह गया, आंसू खाली ऐसे ही बहते रहते हैं। ये संसार वास्तव में ऐसा ही है, उस थिएटर की तरह है जहां आदमी जाता है और अपने आप को ऐसा सोचता है, भाग्यशाली सोचता है, सोचता है कि मैं अब अनाथ नहीं हूं, मेरा कोई नाथ है। बहुत सुंदर खुशबू है इसमें। लेकिन यहाँ ज्यादा आ रही है। आपके लिए भी होगा आने वाले समय में। खैर, तो व्यक्ति संसार में जाता है लेकिन संसार में भी सह नहीं पाता। कई बार संसार में अगर उसको भगवान की भक्ति का आश्रय मिल जाता है, संसार में भी भक्ति का आश्रय मिल जाता है, जैसे उस थिएटर में रसखान जी की हमें लीला मिल गई, तो हम उसके माध्यम से वो समय हमारा बड़ा अच्छा कट गया और एक समझ प्राप्त हुई कि हाँ, हमें इस दिशा की ओर जाना चाहिए। ऐसे ही संसार में भी जब हमें कभी भक्तों की संगति मिल जाती है और उनकी संगति से हमें कोई भक्ति का तरीका मिल जाता है, भक्ति का एक प्रोसेस मिल जाता है, तो वो प्रोसेस भी हमारे लिए एक डूबते को तिनके का सहारा, वो एक सहारा है जो हमारी नैया को पार लगा सकता है। समझ रहे हो? और अगर बाय चांस फिर भी हालत तो खराब रहती रहती है, लीला चल रही है फिर भी आदमी परेशान तो रहता ही, बार बार इधर नजर ऐसी और दूसरा लग जाए, ये बंद क्यों हो गया, पीछे वाला तो चल रहा है, आगे वाला क्यों बंद हो गया, इधर बटन दबाओ उधर बटन दबाओ, लीला को छोड़ के ध्यान उधर भी जाता है। तो कई बार संसार में हम परिस्थितियों को सॉर्ट आउट करने में ऐसे डूब जाते हैं कि भक्ति के प्रोसेस को हम कई बार साइड में कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस इतना आकर्षक होता है, वो सब चीज़ों से निकाल करके हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और कैसे भी करके हमारा जीवन निकल जाता है। इसलिए संसार में भी ये भक्ति ही एकमात्र सहारा है। अगर आप लोग संसार में वापस लौट के जा रहे हैं थिएटर की थोड़ी बाहरी साज सज्जा को देख करके, संसार की बाहरी लुकआउट चांदनी को देख करके, अगर हम चकाचौंध को देख करके वापस जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। वहाँ ऐसा ही होगा, कितना भी अच्छे से अच्छा बना लो, कोई ना कोई समस्या आपको देता ही रहेगा। और अगर वहाँ से आप निकल करके बाहर आ जाओ, जैसे हम वहाँ से निकल के बाहर ही तो आ गए थे, और बाहर हम कितनी देर बैठे, 2 घंटा बैठे करीब, आराम से बैठे, कोई पंखे को ऐसे नहीं कर रहा था, कोई पंखा भी नहीं चल रहा था, कोई एसी भी नहीं चल रहा था, कुछ नहीं, और आपको लीला भी वीडियो लीला नहीं दिखाई दे जा रही थी, आपको केवल सुनने को मिल रहा था, बस ऑडियो, बस वीडियो के रूप में एक ही पर्सनालिटी था सामने, बस भद्दा सा आदमी जो आपको बार बार उसी की ओर देखना पड़ रहा था। तो आप मेरे को देख रहे थे वहां, लेकिन 2 घंटे तक आप देखते रहे, फिर मैं आपको वहाँ से ले जाता हुआ पता नहीं गोलोक और प्रलय आदि और कहाँ कहाँ तक आपको ले गए थे, है कि नहीं? तो कहीं भी हम केवल बैठे बैठे घूमते रहे सब जगह पर, कितना आनंद आया ना, बाहर कुछ नहीं था तो भी कितना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था अब कहाँ बैठेंगे, यहाँ तो कुर्सियाँ भी नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ सब वातावरण कितना अच्छा हो गया था। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, किधर जाते हैं, भगवान की शरण, और वहां कुछ भी ना हो, लिटरली कुछ भी ना हो, तो भी आपको किसी चीज की परवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपका जीवन बड़ा आनंद से व्यतीत हो जाता है। तो आप लोग यहां आए हो, इसका मैं अनुभव से आपको बता रहा हूं, ये मंदिर भगवान का ऐसा ही था। 100-125 वर्ष पहले एक राजा के अंतर्गत एक सरदार रहते थे, जैसे मुख्यमंत्री के नीचे मंत्री रहता है, ऐसे उस समय राजाओं के नीचे सरदार होते थे। तो एक बलवंत राव भैया जी करके ग्वालियर राजा के अंतर्गत सरदार थे, और उनको संसार की इस विवत्सता से परेशान होकर के वो इस ब्रज में चले आए। संसार में हर व्यक्ति परेशान होता है, चाहे वो राजा हो या राजा का बाप हो। जब वो यहाँ चले आए ज्ञान ज्ञान की खोज में, तो उनसे पहले एक बिहार में मुंगेर से एक बालक चलाया, वो भी भगवान की खोज में, उसको भी वैराग्य हो गया, किसी को जल्दी हो जाता है किसी को देर से होता है। तो वो बालक चलाया, वो सोचा मेरे को भक्ति करनी है, बस संसार देख लिया। तो चला आया तो यहाँ कई सारे साधुओं के पास गया, भैया मेरे को सैफरन कपड़ा दे दो, मैं साधु बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नया बालक है, पता नहीं इसे संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, पता नहीं अभी जवानी में कहीं इधर उधर आकर्षित हो गया तो कपड़ा बदनाम होगा, इसलिए साधु वेश उन्होंने उसको दिया नहीं किसी ने। लेकिन वो इतने जिद्दी थे कि उन्होंने यमुना में स्नान करके खुद ही साधु वेश बना लिया। अब साधु वेश ही नहीं बनाया, वेश बनाने के बाद वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, क्योंकि ऊपर के ड्रेस से ही सब काम नहीं होते। ड्रेस अच्छी बात है, मान लो कोई आपको बढ़िया एकदम ड्रेस के साथ बढ़िया डॉक्टर दिखाई दिया और आता उसको कुछ भी नहीं, तो क्या काम का ड्रेस। इसलिए शिक्षा ज्यादा जरूरी है। लेकिन बाहरी दुनिया क्या देखती है, तामझाम देखती है, ड्रेस देखती है कि नहीं, वो शिक्षा को नहीं देखती। डॉक्टर शिक्षा से जाना जाएगा या ड्रेस से जाना जाएगा? लेकिन हम डॉक्टर को कैसे पहचानते हैं आजकल? ड्रेस कोड से, हमारी बीमारी है। तो उन्होंने देखा साधु बन गए, लेकिन साधु बन करके भी शिक्षा नहीं मिली तो क्या काम का साधु जीवन। ऐसे बहुत सारे लोग यात्रा करने के लिए आते हैं और जगह जगह देखने की चेष्टा करते हैं आंखों से, लेकिन देख करके भी नहीं देख पाते। जैसे हम लोग कई बार एक्सरे निकालते हैं और एक्सरे को देखते रहते हैं आधे घंटे तक, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन डॉक्टर है 2 सेकंड में देख के फेंक देता, हमको दुख लगता है 300 रुपए का एक्सरे निकाला, ठीक से देखा भी नहीं इसने। आंखों से उसको दिखता है कि नहीं डॉक्टर को? हमें आंखों से डॉक्टर हमें दिखता है कि नहीं? हमें भी दिखता है, लेकिन हमें एक्सरे में क्यों नहीं दिख रहा है आधा घंटा देखने के बावजूद भी? ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारी आंखें ज्ञान से पूरित होती हैं तब बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो आंखों से दिखाई देते हुए भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए शिक्षा का महत्व तो ज्यादा है। कई बार अनदेखा करते हुए भी देख लेता है, उसने एक प्रकार से 2 सेकंड में फेंक दिया, अनदेखा करते हुए भी उसने देख लिया जो उसको देखना है, समझ रहे हो। ऐसे कई बार हम वृंदावन धाम में चारों तरफ घूमेंगे, सब जगह घूमेंगे, लेकिन जो देखना है वो दिखाई नहीं देगा और जो नहीं देखना है दिखाई दे जाता है। लेकिन जब शिक्षा होगी तो क्या होगा, जो देखना है वही देख पाएंगे। और कैसे देख पाएंगे? चलते चलते देख पाएंगे। एकदम से भाव जागृत हो जाएगा, एकदम से चलते चलते एक छटा मात्र देखने से, खाली मोर पंख मात्र देख लेंगे अश्रुपात चालू हो सकता है अगर शिक्षा प्राप्त हो जाए तो। ऐसे आनंद में डूब सकते हैं। और मोरों का झुंड भी देख लेंगे तो भी सोचेंगे इनमें से एक मार के खा जाते हैं। अगर शिक्षा नहीं होगी तो राक्षसी वृत्ति होगी। तो इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार इस बार तो गर्मियों में आ गए, अगली बार तो कभी गर्मियों में नहीं आएंगे। और जबकि भक्त लोग सोचते हैं कि हर महीने चलो वृंदावन, उस पे लग जाएगा, इस बोर्ड लग जाएगा वहां पर नोटिस बोर्ड पर, चलो वृंदावन तो अगले महीने तो और ज्यादा गर्मी होगी। हाँ हो सकती है, लेकिन हमें अगले महीने केवल शिक्षा के लिए आना चाहिए। किसके लिए आना चाहिए? शिक्षा के लिए आना चाहिए। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक ये शिक्षा की क्लासेस होना जरूरी है। वो ऐसे नहाने से और ज्यादा श्रेष्ठ है। पहले ही शिक्षा में बिठाओ तो पिन मारने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्या किया वहां जाके बिठाया बस। तो जो व्यक्ति थे इन्होंने यमुना स्नान खुद से किया, जगह जगह घूमे, लेकिन उसके बाद शिक्षा के लिए चले। और उन्होंने यहीं पर एक रामकृष्ण पंडित जी महाराज रहते, तो उन सब की कथाएं सुनाने जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे। उनसे जाकर के उन्होंने शिक्षा लिया और उनका नाम पड़ा हरिचरण दास। क्या नाम पड़ा?
हरिचरण दास।
इधर जो फोटो आप देख रहे हैं ये वही हरिचरण दास बाबा जी हैं। बोलो हरिचरण दास बाबा जी महाराज की जय। समझ में आया? ये हरिचरण दास बाबा जी आप यहाँ जैसे राधा कुंड पे गए, कुसुम सरोवर गए थे कि आप लोग नहीं जाए, दूर से देखा ना लाइट जहाँ जल रही है वहाँ, ऐसे ही छतरियाँ हैं ऊपर, तो वहाँ छतरी पे नीचे बैठ करके वो अपना जप करते थे हरिचरण दास बाबा जी, थोड़ा राधा कुंड पे जप करते थे। इनके लिए कोई निवास स्थान ऐसा नहीं था, घूमते फिरते ही भगवान के नाम का जप करते घूमते रहते थे। उसी समय ग्वालियर के जो सरदार थे बलवंत राव जी, उनको वैराग्य आया, वो भी शिक्षा के लिए उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा मेरा एक शिष्य है हरिचरण दास, तुम उनके पास जाके शिक्षा ले लो। तो उन्होंने इनके पास आकर के शिक्षा लिया और इन्होंने ही उनको प्रेरित किया कि तुम्हारा जीवन सारा राज वैभव के साथ व्यतीत हो गया, तुमने भगवान की सेवा नहीं की, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुम अभी भी भगवान की कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो बलि महाराज की तरह। बलि महाराज ने 3 पग भूमि के रूप में सर्वस्व दान देकर के भगवान को आकर्षित कर लिया, तुम भी भगवान की कृपा को आकर्षित करो। तो इनके कहने पर बलवंत राव जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। उस समय चारों तरफ घना जंगल था, केवल एक परिक्रमा मार्ग में मानसी गंगा एक स्थान था और कोई स्थान नहीं था, ये दूसरा स्थान था जहां लोग बैठते थे प्रसाद पाते थे। और ये मंदिर का फिर उन्होंने भव्यता के साथ निर्माण किया। यहां से 24 घंटे प्रसाद वितरण होता था, 24/7। ये इतना वैभवशाली मंदिर था कि यहां भगवान के इस दरबार से जितने भी ब्रजमंडल में साधु रहते थे, वैरागी साधु जितने भी रहते थे, उनको इस मंदिर से मंथली सैलरी दी जाती थी, उनके भरण पोषण के लिए मंथली दक्षिणा दी जाती थी। उस समय आनापाई में करेंसी होती थी, उस समय यहां से रुपयों में दक्षिणा दी जाती थी। ऐसा वैभव था इस मंदिर का, क्योंकि भक्तों ने बड़े भाव से बनाया था और ये मंदिर उसी वैभव से आगे बढ़ता रहा। आज से 60 साल पहले जब जहां इस प्रकार से सेवाएं होती हैं, भक्ति करते हैं भक्त लोग, तो फिर भगवान को आना पड़ता है। और भगवान को यहां से कहीं आने की जरूरत नहीं है, तो दिव्य स्थल है ही ऐसा दिव्य कि यहां तो भगवान सदा रहते हैं। तो क्या हुआ, यहां पर इतने सेवाओं के साथ भी 24/7 जब प्रसाद वितरण हो रहा है तो भक्त लोग कितने बिजी रहते होंगे, कितना कुकिंग करना पड़ता होगा। उस समय ऐसा नहीं था कि गैस थी फटाक से बटन दबाओ, उस समय ऐसा नहीं था टाइल्स थे वाइपर मारो साफ हो गया, गोबर से मिट्टी से चौका लगाया जाता था, लीपा जाता था, लकड़ियों से भट्टियों में कुकिंग की जाती थी, बर्तनों को रगड़ा जाता था बड़े बड़े, ऐसा सब कुछ होता था। तो यहाँ उस संघर्ष के साथ सेवा की जाती थी, लेकिन उस संघर्ष में भी नियम था यहाँ पर कि इसी हॉल में प्रतिदिन सुबह में भागवत क्लास होती थी। क्या होती थी? भागवत का क्लास। आज भी होती है। बोले उस भागवत क्लास में प्रत्येक व्यक्ति को बैठना है प्रतिदिन, अगर एक भी व्यक्ति नहीं बैठेगा तो मंदिर में नहीं रह सकता। बोले ऐसा क्यों जरूरी था? बोले अगर भागवत क्लास सुनोगे जिसमें भगवान की भक्ति की, भगवान का भक्तों की, भगवान की महिमा सुनाई जाती है, उससे ऐसा होगा कि तुम्हें भगवान की सेवा कभी बोझ नहीं लगेगी, भगवान की सेवा कभी बोझ नहीं लगेगी। और संसार तुम्हें बोझ लगने लगेगा। क्या सुनेंगे? तो भागवत कथा सुनेंगे। क्यों बोझ लगने लगेगा? क्यों? भागवत ऐसा ग्रंथ है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। इस भागवत का आस्वादन करने वाले परमहंस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? परमहंस। हंस की ही ऐसी क्षमता होती है कि उसको पानी और दूध मिला करके दे दिया जाए तो वो पानी को छोड़ देता और दूध को पी लेता। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं पैदा हुई जो दूध और पानी को मिलाने के बाद अलग कर सकता हो। कौन सा जीव ऐसा? हंस। और भागवत का आस्वादन करने वाले कौन बन जाते हैं? परमहंस। तो मिलावट चलेगी उनके जीवन में? सीधा मक्खन निकाल करके काम करते। ये परमहंस भक्त लोग होते हैं। इसलिए जब संसार बोझा है तो उनको बोझा ही दिखेगा, और भगवान की भक्ति बोझ नहीं है तो उनको पता चलेगा कि भगवान की भक्ति बोझ नहीं है वास्तव में। लेकिन हम संसार की एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, हमको लगता है भक्ति बोझ है और संसार सुखों का घर है। इस वास्तविकता का ज्ञान किसके द्वारा हो सकता है? भागवत कथा के द्वारा। तो उनका नियम था प्रतिदिन भागवतम में हर व्यक्ति ने आना ही आना है, जिससे तुम्हें सत्य पता चलेगा कि क्या वस्तु क्या है, संसार क्या है और भगवान की सेवा क्या है, भगवान की शरणागति क्या है। क्या हुआ, उनको प्रतिदिन अटेंड करना पड़ता था सारे भक्तों को। अगर भागवतम अटेंड नहीं करोगे तो भगवान की सेवा बोझ बन जाएगी और संसार अच्छा लगेगा, और अगर भागवत क्लास अटेंड करोगे तो संसार बोझ बन जाएगा और भागवत क्लास अच्छी लगेगी, भगवान की सेवा अच्छी लगेगी, भगवान की शरणागति अच्छी लगेगी। किस कारण से ऐसा होगा? केवल क्लास सुनने से। इसलिए क्लास अटेंड करने पर कितना फायदा और क्लास नहीं अटेंड करने पर कितना नुकसान है, हम कितने भ्रमित हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो उनका नियम था, इसलिए हर व्यक्ति अटेंड करता था क्लास। एक दिन क्या हुआ, एक श्यामदास नाम के शिष्य थे, वो क्लास में नहीं आए और इतने बिजी रहते थे किसी को टाइम ही नहीं मिलता था। राधा कुंड जाएं या बरसाने जाएं, नंदगांव जाएं या परिक्रमा लगाएं, गिरिराज जी हर समय सेवा में लगे रहते थे, झाड़ू लगाना, चौका लगाना, भट्टी खोदना, अन्य कार्य करना, कोई अन्य कोई चर्चा ही नहीं। क्या हुआ, एक दिन श्यामदास नाम का एक भक्त नहीं आया, और जब क्लास में रोज क्लास देने वाले हों, रोज अगर बैठने वाले लोग हों तो फिर ध्यान में तो आ ही जाते हैं ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एक ही नजर में पता चल जाता है कौन एब्सेंट है कि नहीं। अभी जैसे अभी पता चल रहा है, हाँ जगदीश प्रभु नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रोज की लेन देन है ना, आप लोगों के साथ अभी रोज का लेन देन चालू नहीं हुआ, अभी तो हम ईद के चांद है ना, कभी कभी खिलते हैं, इसलिए पता नहीं कौन आ रहा और कौन जा रहा है। तो उन्होंने, अरे श्याम नहीं आया, श्याम किधर है, तो सब देखने लगे, हाँ श्याम नहीं आया, श्याम किधर है, जाओ बुला के लाओ श्याम को। तो बुलाने के लिए गए, तो जब बुलाने के लिए गए तो जहाँ आप लोगों ने प्रसाद पाया ना, जहाँ प्रसाद पाया, पहले वहाँ कच्चा रसोई था, तो वहाँ रसोई की सेवा की जाती थी, तो वहाँ रसोई तैयार करने से पहले सुबह में कथा होती थी, उसके बाद प्रसाद बनता था, तो लिपाई करते थे, तो देखा वो ऐसे करके बैठे हुए हैं वहाँ, ऐसे हाथ रख के गाल पर ऐसे बैठे हुए, पीछे से उसने आवाज़ में श्याम श्याम, नज़दीक जा कर के उनकी पीठ पीछे दिख रही थी, श्याम चलो गुरुजी बुला रहे, और श्याम ऐसे कैसे बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा श्याम बोलता क्यों नहीं, इतना नजदीक से बोल रहा हूं मैं, आखिर में वो घूम करके उसके सामने गया, सामने जाकर के क्या देखा कि श्याम का हाथ गोबर में सना हुआ है, गाय के गोबर में, और वो सना हुआ हाथ जिससे लिपाई कर रहा था वो उसने गाल पे लगा रखा है, और ऐसे गाल पे लगा करके आंखें उसकी फटी हुई हैं और आश्चर्य से देख रहा है कहीं, और देखते देखते उसकी आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। उसको उसने हिलाया, श्याम गुरुजी बुला रहे हैं, और वो ऐसे घूर घूर के देख रहा है, कोई जवाब नहीं है, वो घबरा गया कहीं भूत भूत तो नहीं घुस गया इसके अंदर। वापस जाकर के आया इस मंदिर, बोले गुरुजी उसकी तो ऐसी दशा है, क्या हो गया उसको? बोले घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये धाम है, यहाँ इस प्रकार का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता, यहाँ निरंतर कीर्तन चलता रहता है, उसको अवश्य ही उस चीज की प्राप्ति हुई है जिसके लिए हम साधु बनते हैं। थोड़ी देर बाद वो आया, आकर के बार बार दंडवत प्रणाम करने लग गया, बोले क्या हो गया था तुमको? बोले क्या बताऊं, मैं जब वहाँ गोबर से लिपाई कर रहा था, उसी समय अचानक से छम 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 घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा राधा श्याम सुंदर भगवान राधा रानी के गले में हाथ डाल करके दोनों नृत्य करते हुए मेरे पास तक आए और आकर के अचानक से अंतर ध्यान हो गए। उनकी स्वरूप छटा को देख करके मैं तो ठगा सा रह गया और मैं भूल गया कि मेरा हाथ गोबर से सना हुआ है। मैं तो ऐसा अद्भुत सौंदर्य देख ही नहीं पाया, आंखें फटी की फटी रह गईं और अश्रुपात होने लग गया। मैं तब से वो छवि को अपने हृदय से निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो पागल जैसा हो गया उस छवि को देख करके। ये साक्षात दर्शन यहीं पर श्यामदास जी को हुए आज से 60 साल पहले। हरी बोल। तो ये मंदिर वो स्थल है जहाँ भगवान आपको झाड़ू पोंछा करते हुए भी साक्षात रूप से दर्शन दे सकते हैं, बशर्ते आप झाड़ू पोंछा करने के लिए तैयार होने चाहिए। लेकिन हमारा जीवन तो अपने घरों में सारा झाड़ू लगाते लगाते निकल जाता है और वहाँ दर्शन कुछ और ही होते हैं। आगे चल करके कहते हैं बुढ़ा मरता भी नहीं है, चारपाई चढ़ता भी नहीं, निकाल के घर से बाहर करते हैं। लेकिन ये धाम ऐसा है कि यहाँ कुछ नहीं भी हो ना तो भी आपको यहाँ भगवान, अगर आप सच्ची भावना से आए हो तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जब हम यहाँ आए 60 साल पहले की ये घटना बताई हमने, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे करके पैसे का लेन देन अधिक होता था, तो गलत किस्म के लोग भी पैसे के लेन देन जहाँ होता वहाँ प्रवेश कर जाते हैं और परीक्षाएं भी होती हैं भक्तों की। आगे चल करके ये मंदिर इतने गलत हाथों में चला गया कि ये मंदिर प्रायः कई बार चोरी का शिकार हो गया और ये मंदिर इतना जर्जरित हो गया कि भगवान की सेवा भी ठीक से नहीं होती थी। एक दो बारी भगवान को दोपहर में कभी भोग लगता था बस। ये सारे खिड़की दरवाजे आदि सब उखाड़ दिए गए थे, लोग उखाड़ उखाड़ के ले गए थे। यहाँ पर सट्टा खेला जाता था, लोग यहाँ शराब पीते थे, 20-20, 30-30 लोग शराब की बोतलें ऊपर छत पर बैठ कर के पीते थे, सिगरेट फूंकते थे, सट्टा खेलते थे, व्यभिचार करते थे। ये मंदिर धीरे धीरे ऐसा दुष्प्रभावित हो गया, फिर इस मंदिर में कोई प्रवेश भी नहीं करता था डर के मारे। एक आध व्यक्ति थे वो संघर्ष करते हुए थोड़ी बहुत सेवा करने की चेष्टा करते थे और थोड़ी बहुत ताला लगा करके, एक यही दरवाजा था बस, इसमें थोड़ा ताला लगा करके अंदर सेवा करने की चेष्टा करते। ये सब टूटे पड़े थे, ये सब दरवाजे आदि सब उखड़े पड़े थे, दीवारों में बड़े बड़े होल थे, चारों तरफ से सांप आदि अंदर घुसे रहते थे, अड्डा बन गया था, ये पूरी दीवारें जर्जरित हो गई थी, ऊपर से पानी होता था सब जगह, नीचे पानी टपकता था, बहुत दुर्दशा हो गई थी। ऐसा लगता था कि नीचे का फ्लोर नहीं दिखता था और ऊपर की छत नहीं दिखती थी, इतना रस्सियों से तारों से जंजाल पड़ा हुआ था, जाले लगे पड़े थे चारों तरफ, दीवारें खंडहर नीचे, बहुत बुरी दशा। और ये इन प्रकार इन महाराज ने हमें 3 साल से आदेश दिया, तुम जाओ भाई वहाँ जाओ भाई, हम जा नहीं पा रहे थे, हमारे पास कोई था ही नहीं, न पैसे थे न आदमी थे, कुछ भी नहीं था। आखिरी में महाराज ने कहा तुम जाओगे या नहीं जाओगे, हम डर गए, हमने कहा महाराज आपका आदेश है तो हम अवश्य जाएंगे, आपका ऑर्डर ऑर्डर इज ऑर्डर, क्या करें। जब हम आए तो दोपहर में ऐसे ही मई जून का महीना था, बहुत गर्मी थी, तपते तपाते दो ही लोग थे, मैं था और एक प्रभु जी थे जो आपके अभी देहरादून में सेवा करते, राम मूर्ति प्रभु। हम दो ही लोग आए, आकर के हमने दरवाज़ा खटखटाया तो यहाँ ताला लगा था, एक माता जी ने अंदर से देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा खोला ही नहीं। बाहर जहाँ आप लोगों ने चप्पल वगैरह उतारा, हम लोग गर्मी बहुत थी, हमने अपना गमछा बिछा करके वहीं नीचे ही हम सो गए। तो बड़ी मुश्किल से कैसे भी कर करा करके शाम के 4-5 बजे तब एक गाय आई और गाय ने हमारे ऊपर पेशाब किया। फिर हम लोग उठ गए, ये सोचा कि चलो गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये पूरी बिल्डिंग पूरा आश्रम अलग अलग लोगों ने कब्जा करके रखा था, केवल ये हॉल ही कब्जे में नहीं था बस, बाकी ये कमरे भी कब्जे करके रखे हुए थे, ऊपर का इधर उधर का सब दुष्ट लोगों ने कब्जा करके रखा था। ये हॉल में भी इतना सामान पड़ा था कि ऐसे फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे थे कि पैर रखने की जगह है कि नहीं अंदर। तो दरवाजा खोला ही नहीं उन्होंने। शाम को उनके पति आए, उन्होंने कहा अरे ये लोग तो सेवा करने के लिए आए, दरवाजा खोल दो। फिर उन्होंने दरवाजा खोला तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर किया तो मेरे को हृदय से ऐसा लगा कि पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल करके खांडव वन भेज दिया गया था, जैसे सूखा बिना उपजाऊ भूमि का घने जंगल जहाँ सांप ही सांप रहते थे तक्षक नाग के साथ में, वो स्थान पांडवों को दिया था। तो जैसे ही मैं यहाँ आया मेरे मन में सबसे पहले ऐसा आया कि गुरुजी ने मेरे को खांडव वन दे दिया है। और फिर उन्हीं की दया से आया कि उस खांडव वन को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, उसको अपनी कर्म भूमि बनाया, तो शायद गुरुजी इसको भी इंद्रप्रस्थ बना देंगे। इस आशा से हम यहाँ पर रहना चालू किए। तो खिचड़ी भी पूछ करके बना सकते थे, खिचड़ी भी बनाने का अधिकार नहीं था, बनाने के लिए कोई साधन नहीं था। बड़ी मुश्किलों के साथ कैसे भी 4-6 दिन ऐसे व्यतीत हुए, साफ सफाई करने लगे, थोड़ा बहुत हर व्यक्ति के सामने जितने भी कब्जेदार थे सलाम ठोकते थे, जी हजूरी करते थे। एक टूटा फूटा बाथरूम था, मात्र हम दो ही लोग थे। ऐसे संघर्ष के साथ भगवान की सेवा करने लगे तो भगवान के मंदिर से 3 दिन हमने सांप निकाल निकाल के बाहर फेंका। अंदर अल्टर में उसने सुबह भगवान को उठाया तो बेड के नीचे पैर लगा तो पैर को गीला गीला सा लगा, तो उसको लगा शायद चूहा होगा। भगवान को विराजमान करके नीचे देखा तो सांप गोल मुंडी करके बैठा हुआ है। बार बार वो आ जाता था, छेद थे चारों तरफ दीवारों में, उस सांप को निकाल करके बाहर फेंका। रात को हम लोग सोते थे तो दीवारों से निकल निकल करके बिच्छू आ जाते थे, सुबह 3-4 बिच्छू मरे हुए मिलते थे, क्योंकि दब जाते थे नीचे शरीर से तो मर जाते थे बेचारे। तो फिर हम लोग स्लीपिंग बैग लेके आए, चेन लगा करके उसमें अंदर घुस के कि कम से कम बिच्छू काटेगा तो नहीं, और सोने के लिए कॉट नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसी व्यवस्था में यहाँ पड़े रहते थे। बहुत संघर्ष था। अंत में एक बाथरूम था, उसका दरवाजा भी ठीक नहीं था, उस दरवाजे को रिपेयर करने के लिए भी, रिपेयर हो ही नहीं सकता था, हम सोच रहे थे नया दरवाजा रिप्लेस कर देते हैं। तो नया दरवाजा भी हम लगा नहीं सकते थे, मार्केट से ला नहीं सकते थे, तो हमने चालाकी से 2 गद्दे खरीदे फोम के, और 2 गद्दे खरीद के उसमें नया दरवाजा हमने खरीद करके अंदर छुपाया और उसको रिक्शे में डाल करके अंदर लेके आए। लोगों को लगे कि भाई ये गद्दे ला रहे हैं, दरवाजा नहीं ला रहे हैं। और इस प्रकार से हमने अपना खुद से वो चिनाई करके वो दरवाजा लगाया। फिर 2-4 और भक्त लोग आए, फिर उन लोगों ने वेल्डिंग करना सीखा, टाइल लगाना सीखा, चिनाई करना सीखा, वेल्डिंग की मशीन फसीन हमने खुद से खरीदी। फिर धीरे 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 कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा हुआ कि एकदम से धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आने लग गया। काफ़ी संघर्ष होते थे, आए दिन माफियाओं के साथ झगड़े होते थे, भक्तों को पुलिस पकड़ के ले जाती थी, रात को 3-3 बजे तक पुलिस स्टेशन रखती थी। एक दिन मेरे को उठाने के लिए बोला कि आपको थानेदार साहब बुला रहे हैं, बिठा के ले गए और वहाँ जाके अंदर कारागार में डाल दिया उन्होंने। तो वहाँ भगवान की दिव्य इच्छा से वहाँ से भी हम निकल करके आगे उसी दिन 1-2 घंटे बैठे होंगे, तुरंत भगवान ने निकाल दिया। तो काफ़ी संघर्ष करते हुए मात्र 4 साल व्यतीत हुए, और महाराज की दया से पिछले 3-4 महीने पहले ही इधर साइड का पोर्शन दुष्टों से खाली हुआ, और अभी पूरी तरह से भगवान का ये परिसर पूरी तरह से खाली हुआ। और तब से अभी तक करीब हम इसमें 80-90 लाख रुपए लगा चुके हैं, जबकि हम किसी से मांगते भी नहीं और कहीं से कोई ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं करते। फिर भी भगवान ने ऐसा डिवाइन अरेंजमेंट किया कि मेरे पिताजी का शरीर छूट गया और उनका फंड का 50 लाख रुपया था, वो कैसे भी भगवान की सेवा में लग गया। तो ये भगवान का अरेंजमेंट था, समय समय पर लोगों ने भी इस प्रकार से सहयोग किया। लोग तो क्या सहयोग करेंगे, सारा अरेंजमेंट भगवान का ही है। तो भगवान ने धीरे धीरे करके ऐसा सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाने की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या ऊपर की छत भी दिखती है, नीचे का फ्लोर भी दिखता है, दीवारें भी दिखती हैं, बाकी सब चीज़ें अभी हमारे पास 18-20 बाथरूम हैं और धीरे धीरे करके कमरे भी हैं और भी व्यवस्थाएं बन रही हैं, ये सब चल रहा है। तो मात्र 4 साल के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान ने सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से ऐसा रूप दे दिया और फिर भक्त भी भेज दिए। फिर 20-30 भक्त लोग आराम से अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं, निरंतर समर्पित भाव से होकर के रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम थिएटर से निकल करके बाहर गए थे और बाहर फिर सब कुछ अच्छा लगने लगा, ऐसे ही हम इधर उधर से भटक करके जब भगवान ने हमें यहाँ दिया तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी केवल हम भक्ति का नाटक मात्र करते हैं। सच्ची भक्ति करेंगे तो क्या होगा पता नहीं, केवल नाटक मात्र करने से ही देखो भगवान ने क्या कुछ नहीं दे दिया। और पुनः अभी सुबह शाम लोगों को हम प्रसाद बांटते भी हैं, तो ये सब कुछ भगवान की दया से असंभव भी संभव हो सकता है। हम लोग लेकिन संसार में नाथ ढूंढते हैं, लेकिन भगवान सबके नाथ हैं, सबके जगन्नाथ हैं। और आपने देखा होगा ये भगवान 150 वर्ष पुराने विग्रह हैं, छोटे से विग्रह हैं, लेकिन कितने सुंदर हैं, ये बहुत सुंदर है। और ये साक्षात भगवान हैं। हमसे पहले भी लोग आए थे, उन्होंने यहाँ को बिजनेस का अड्डा बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सारे लोग भगवान ने महीने 2 महीने में सबको गायब कर दिया, किसी को टिकने ही नहीं दिया। लेकिन हमें भगवान ने ऐसा टिकाया इन्हीं ने दया करके कि सारे ब्रज में हमारी चर्चा होती रहती है। तो ये चर्चा अभी ऐसे ही हो रही है, करता कोई और है, नाम किसी और का हो रहा है। करने वाले भगवान है। तो आने वाले समय में ये मंदिर हमारा शिक्षा का बहुत अद्भुत केंद्र होगा। तो आप लोगों से सार रूप में मेरा यही निवेदन है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि संसार में कुछ नहीं, संसार में आदमी एक मकान बनाने में पूरा जीवन निकाल देता है, एक गाड़ी लाने में पूरा जीवन निकाल देता है। हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, आज हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं कि उनकी धूल साफ करने की हमारे पास ताकत नहीं, उन पर धूल आ जाती इतनी सारी। इसलिए हम चाहते हैं देहरादून से आप सब लोग यहाँ पर समर्पित हो जाओ, हम तो ये चाहते कोई वापस जाओ ही मत, जिससे आप सबको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भगवान देंगे समय समय पर। तो असंभव भगवान संभव करते हैं, क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। भगवान जब प्रकट कैसे होते हैं, भगवान आराधना से प्रकट होते हैं। इसलिए आप सब लोग यहाँ आराधना की सर्वोत्तम स्थली है, इससे बड़ी कोई स्थली नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी ये यात्रा हो गई, अब गर्मियों के बाद कभी यात्रा में आएंगे, नहीं। यहाँ के लिए तो हमेशा के लिए मौका मिल जाए तो हमेशा के लिए रहो, और जीवन में हर महीने अगर अवसर मिले तो हर महीने आप सब लोगों ने समय निकाल करके आना ही आना है। तो कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़ा करो जरा। अरे वो सारे आएंगे या औरों को भी लाएंगे? वेरी गुड। तो जो लोग आने जाने का झंझट नहीं मोल लेना चाहते, थिएटर में नहीं जाना चाहते, वो यहीं रहो कंटिन्यूस। खैर ये भगवान का दरबार है, हमें इसमें अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तो ये थोड़ा संक्षेप में आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा मेरे को संबोधित करना था कि यात्रा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये भगवान ने धाम हमको दिया है जहाँ हमें परिश्रम नहीं करना, कुछ सहज रूप में। जैसे आप परिश्रम करके गंगा जी जाओ तो गंगा जी जाने पर पुण्य मिलेगा कि नहीं? कुछ गलत करोगे तो उसका पाप लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। सोच के गलत करो तो भी पाप लगना है, अनजाने में गलती करो तो भी पाप। ऐसे सोच के भक्ति करोगे तो भी भक्ति का पुण्य मिलना है, और अनजाने में भक्ति करोगे तो भी पुण्य मिलना है। तो ये धाम ऐसा है कि इस धाम को भगवान ने दिया इसलिए कि किसी को कहने के लिए कहो ना कि भाई तू ऐसा कर ले जरा, तू आसानी से करता नहीं। उसको कहा जाए कि भाई तू भक्तों के दर्शन कर जरा, तो नहीं करने जाता। लेकिन इस धाम में अगर कोई रहता तो चाहे या न चाहे उसे भक्तों के दर्शन करने ही पड़ेंगे। तो उसके न चाहने पे भी भक्ति हो रही है कि नहीं, तो उसको करनी पड़ रही है क्या? नहीं। वो सोचे नाम लो या नाम बुलवाओ किसी से, प्रचार प्रसार करो, उसको करने के लिए कहो तो नहीं करेगा वो। लेकिन यहां धाम में रहोगे तो राधे राधे आपको बोलना ही पड़ेगा। आप नहीं भी चाहो सुनना तो भी आपको राधे राधे सुनना ही पड़ेगा। किसी को बोलो जाकर के रमन रेती में या धाम में जाकर के थोड़ी बहुत मिट्टी अपने सर पे लगा लो, नहीं जाएगा लगाने के लिए। बोले मैंने क्रीम लगाए फेयर एंड लवली, मैं भला मिट्टी लगाऊंगा? या फेयर एंड लवली लगाओ या एवर यूथ लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, आपको यहां पाउडर के रूप में ब्रज रस स्वीकार करनी ही पड़ेगी। कितने भी अशोक प्रभु की तरह आप पॉकेट में हाथ डाल करके रमन रेती में घूमते रहो, लेकिन आखिर में कोई ना कोई तो आपके सर पे डाली देगा। ये ब्रज भूमि है। किसी को कहो भाई जाकर के दंडवत प्रणाम करो, और आप नहीं करना चाहो, किसको झुकना तो बहुत भारी काम है, झुकना ही तो सबसे बड़ी बीमारी है, कौन झुकना चाहता है? पहले तो भी लोग कम से कम घर वालों के तो पैर छू लेते थे, बाहर के तो क्या छूएंगे। आजकल तो घर वाले के पहले, फिर धीरे धीरे घुटने तक आ गए, लोग घुटने छूने लग गए, घुटने भी खत्म हो गए, सीधा पेट छूते अब तो सीधा ऐसे। झुकना कितना खतरनाक है, कोई नहीं झुकता। और दंडवत करने के लिए कहो तो प्राण निकल जाएंगे। लेकिन यहां धाम में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको यहां लेटना नहीं पड़े? दंडवत मत करवाओ, उसको यहां लेटना ही पड़ेगा। यहां ठंडी भी इतनी कड़ाके की पड़ती है कि उसको सोना पड़ेगा, गर्मी भी इतनी कड़ाके की पड़ती है, कहीं ना कहीं जाकर के पेट ढूंढ करके लेटेगा ही लेट। बोले अगर कोई लेट गया यहां तो उसको दंडवत का फल मिलता है यहां। कई बार हमारे भक्तों को तो सुबह उठाना भारी पड़ जाता है, हम कहते प्रभु उठो, बोलते दंडवत का फल पा रहे हैं। फिर उनको निकाल के बाहर करना पड़ता, जाओ देहरादून जाओ, वहां थोड़ा फल पाओ। इसलिए यहाँ ऐसा दिव्य स्थल है कि यहाँ अनायासी भक्ति होती है। आपको पता है यहाँ कोई मलेच्छ भी होगा ना, उसको भी अपना उद्धार नहीं चाहेगा तो करना पड़ेगा उसको अपना उद्धार, उसका उद्धार जबरदस्ती होगा। बोले कैसे होगा? बोले अगर कोई मुसलमान व्यक्ति भी होगा ना यहाँ, उसको भी यहाँ पर अगर मथुरा नाम ले दिया तो आपको कृष्ण नाम लेने का फल मिलेगा। क्या मिलेगा? तब ऑटो वाला चिल्ला मथुरा 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 मथुरा, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लेस है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, हाँ भाई मेरे को मथुरा जाना है, तो आपने कृष्ण नाम लिया कि नहीं लिया? यहां आपको भक्तों की पद धूलि आपकी नाक में घुसेगी घुसेगी, आपको आलिंगन करना ही पड़ेगा। इसलिए न चाहते हुए भी भगवान ने हमें ऐसी कृपा किया कि न चाहते हुए भी हमें यहाँ भक्त अपने आप बनना पड़ेगा। इसलिए वो लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिनको धाम का ऐसा सुअवसर मिलता है। तो कई बार हम जब आते थे पहले कॉलेज लाइफ से, तो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहाँ से आते थे तो हम घर नहीं जाते थे, घर वाले फिर निकलने नहीं देते ना। घर वालों को बोलो गोवर्धन परिक्रमा जाने, बोले अभी तो छुट्टी आए हो, क्या करना गोवर्धन परिक्रमा, क्या मिलेगा, तो आने ही नहीं देते, वो निकलने ही नहीं देते थे। तो हम क्या करते थे, छुट्टी आते थे सीधे इधर ही आते थे, और जितने भी दर्शन करने, भक्तों की संगति करनी करके, सत्संग आदि करके, तब लास्ट में घर पे जाते थे। और फिर परिक्रमा आदि करने के बाद घर वालों को बोलते पैर दर्द कर रहे हैं भाई थोड़ा दबा दो। बोले पैर बड़े दर्द कर गए, क्या हो गया? बोले बोले गोवर्धन परिक्रमा लगा के आए भाई। तब उनको समझ में आता था। जब हम ऐसे घूमते थे सोचते थे यार कहीं एक कमरा ऐसे ही मिल जाए, कहीं हैंड पंप ही मिल जाए खाली नहाने के लिए, वहीं नहा लेंगे। पैसा होता नहीं था इतना, पॉकेट मनी सारी प्रचार में खर्च हो जाती थी, तो ऐसे ढूंढते रहते थे। लेकिन अब भगवान ने ऐसा दे दिया कि लोग मेरे से आके पूछते प्रभु जी यहाँ थोड़ा ठहर सकते, तो मेरे को हंसी आती है अपने ऊपर, हमारी क्या औकात है, ये भगवान का ही दिव्य स्थल है, उन्होंने हमें अभी मालिक बना करके बिठाया, बिठा के रखा एक प्रकार से। तो यहाँ आप सबके लिए ऐसा सुंदर मौका है कि आप सब लोग चाहो तो अपने जीवन को समर्पित कर सकते हो। जीवन को समर्पित करना है, और उस समर्पण में करना क्या है, कुछ भी नहीं, अनायास खाओ सो बस भक्ति करो, थोड़ा भजन करो, नहीं चाहोगे तो भी करना पड़ेगा यहाँ। तो ये बहुत बड़ा मौका हमारे पास है, इस मौके के लिए आपको कोई तपस्या नहीं करनी, आराधना नहीं करनी, और आप यहाँ थोड़ा बहुत भी कुछ झाड़ू पोछा भी करोगे तो पीछे से भगवान नाचते हुए आ जाएंगे, एक दिन घुंघरू बजाते हुए आपको दर्शन देंगे। तो ऐसा करना है कि नहीं, हमें ऐसा ही जीवन जीना है। तो आप सबका हम 2-3 दिन उत्साहपूर्वक भक्ति करने के लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक गाड़ी चलानी है हमने, थोड़े दिन की गाड़ी से ऐसा काम नहीं चलेगा, भक्ति पूरा जीवन करनी है तो ही जाकर के हमें कुछ प्राप्ति होगी। माता कौशल्या ने बहुत आराधना किया, बहुत तपस्या किया, तब जाकर के उनके राम रूप में भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने सुंदर स्तुति किया। क्या स्तुति की उन्होंने, थोड़ी सी हम संक्षेप में गा देते हैं इसको, और उसके बाद हम विराम देते हैं कथा को, एक दो बातें और बताएंगे उसके बाद, आप लोग भी गा सकते हो तो गा लो, हम गाते चलेंगे, आप लोग थोड़ा उसमें जो जानते हैं या मोबाइल में निकाल सकते हैं निकाल लो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अद्भुत इसका वर्णन है, वर्णन एक एक लाइन का करने जाएंगे तो एक एक घंटा लगेगा कम से कम। आप लोग अगली यात्राओं में, हमने कहा ना शिक्षा मिलेगी, तो हमारा पेंडिंग कोर्स उस समय कंप्लीट करेंगे, ज्यादा दिन के साथ आना। कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेई गावहे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मते थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की न चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परहि भव कूपा। इस संसार को भव कूप कहते हैं, भव सागर कहते हैं, हम सब भव रूपी कुएं में संसार में पड़े हुए हैं और दुखों को भोग रहे हैं। फिर मैं थिएटर में आपको ले जाऊंगा, आप जब उस थिएटर में गए तो आप लाख प्रयास कर रहे हैं हिलाने का, बटन दबाने का, हाथ हिलाने का, अपनी चादर हिलाने का, सबसे बेस्ट उपाय क्या था उस सारे समस्याओं का समाधान के रूप में, बाहर निकलना, बस तालियां बजाइए सब माता जी के लिए। सबसे बेस्ट उपाय बाहर निकलो ना, वहां क्या समाधान ढूंढ रहे हो। ऐसे भगवान कह रहे हैं, अरे यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परे भवकूपा। वो भवकूप में नहीं गिरेंगे, इस चरित्र को जो गाएगा वो हरि पद को पाएगा, वो भगवान के धाम को पाएगा। इस चरित्र को गाओ और सुनो, बस इतना सा करना है, निकलो बाहर। संसार में कब तक समाधान करोगे, कब तक एक जगह से दूसरी जगह मकान चेंज करोगे, एसी चेंज करोगे, वॉशिंग मशीन चेंज करोगे, झाड़ू चेंज करोगे। अरे परिवार के साथी में बोल रहा था निकलने के लिए थिएटर में से, हरी बोल। गुस्से में भी जहर खाए तो मरना है, ऐसे गुस्से में रसगुल्ला खाए तो अच्छा ही लगना ना। नहीं अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उनको समय लगता है। लेकिन क्रोध में भी अगर कहे जा तू रसगुल्ला ही खा तो खा लेना चाहिए ना। क्रोध में भी कोई बुरा थोड़ी कह रहा है। तो पॉइंट इज, हमें संसार में गिरना नहीं पड़ेगा, उसके लिए चरित्र को सुनना पड़ेगा। आपको पता है भगवान के चरित्र कितने हैं? भगवत गीता ही मात्र 700 श्लोक, भागवतम में 18,000 श्लोक। कितने? 18,000। राम जी की लीला अगर कहने के लिए जाएंगे तो रामायण में जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें ही 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक। और ऐसे 24,000 श्लोकों से एक रामायण बनी है। कितनी? एक रामायण। ऐसी भगवान राम की लीलाओं के ऊपर कितने ग्रंथ हैं पता है? 100 करोड़ रामायण हैं। कितने? तो इस चरित्र को गाने सुनने में कितने दिन लगेंगे फिर? तो ये चरित्र को छोड़कर के संसार में हम कहां भटक रहे हैं फिर? 100 करोड़ रामायण हैं जो देवलोक में देवताओं ने अलग लिखी, यहाँ पर अलग लिखी, अलग अलग लोगों ने बहुत सारी रामायणें लिखी हैं। चलो इस रामायण की शिक्षा के रूप में मैं सार रूप में आपको बस दो दोहे थोड़ा सा सुनाता हूँ। तुलसीदास जी ने ये रामायण भी लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखा है। उसमें रामायण में उन्होंने वनवास की सारी लीलाओं का वर्णन किया जो 14 वर्ष उन्होंने किया। बाकी भगवान ने यहाँ पर 13,000 वर्ष तक शासन किया। कितने? 13,000 वर्ष। 14 वर्ष की पूरी रामायण लिखा। और जब उन्होंने अयोध्या में शासन किया, शासन के समय की केवल एक घटना का वर्णन किया। शासन के समय में कितनी घटना का? एक घटना का, बस एक दिन की बात बता रहे हैं तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं वो एक दिन की बात? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप सब लोग हमेशा के लिए इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर जीवन में हम वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो भैया जीवन तो विफल ही विफल है। क्या कह रहे हैं आप सब लोग, पीछे थोड़ा सा गा देना। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए। भगवान राजपाठ चालू कर दिया। अभी हमने प्रकट तो भगवान को कर दिया, युद्ध भी लड़के भगवान आ गए, सीता को वापस लेके आ गए। अब पूरी आप चरितावली तो राम जी की थोड़ी बहुत सुन ही चुके हो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा परीक्षित को संक्षेप में सुनाया, हम भी संक्षेप में सुना रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। गुरुजन भी आए भगवान के बुलाने पर, ब्राह्मण भी आए, पुरवासी अयोध्यापुरी के सब वासी आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन, बोले वचन भगत भव भंजन, जो भक्तों के भव का भंजन करने वाले, भव का नाश, भव कूप में से बाहर निकालने वाले भगवान श्री राम क्या बोले, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी। आप लोग नहीं बोल पाओगे, ध्यान से सुनते चलो। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, अरे पुरजनो मेरी वाणी सुनो। कहो न कछु ममता उर आनी, मेरे अंदर कोई बहुत लाड़ नहीं आ गया इसलिए मैं आपको नहीं बात कर रहा हूं। नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, मैं राजा हूं इसलिए दबाव पूर्वक ये बातें कह रहा हूं ऐसा भी मत समझना, और ना ही मैं अनिति की बात कर रहा हूं। मैं बड़ी सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ, ना किसी से प्रीति है ना मेरा किसी से द्वेष है, इसलिए मैं तथ्य की बातें कर रहा हूं, कोई जबरदस्ती मत समझना। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, बाद में तुम वही करना जैसा तुमको अच्छा लगे, लेकिन मेरा सुन लो एक बार। अब जैसे आपको यहां पर पूरी 3-4 दिन की यात्रा कराया तो आपकी इच्छा से ही कराया ना, आपको बातें समझाई तो वो भी आपके पीछे कोई जबरदस्ती करवाने वाली थोड़ी है, आपकी इच्छा है तो करना, नहीं इच्छा है तो क्या कर सकते हैं, जीव स्वतंत्र है ना, जबरदस्ती भगवान भी नहीं कर सकते, भगवान ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मेरा जो सेवक है वो मेरे को बहुत प्यारा है, कौन सा वाला सेवक, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, रावण भी अपनी मर्जी से चल रहा था, क्या कर सकते हैं, मरना पड़ा उसको, लेकिन मुझे वो सेवक बहुत प्यारा है जो मेरा अनुशासन मानता है, मेरा कहना। अब भगवान का कहना हमारे लिए कि हमें कैसे पता चलेगा, भगवान के जो भक्त लोग भेजे गए हैं, भक्त हमें जो कहें हमें वो मानना चाहिए, वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। जो अनिति कछु भाषो भाई, अगर मैं कुछ अनिति की बात कहूं तो मोह बर जाऊं भय विसराई, कुछ गलत कहूं तो आप मेरे पास आकर के मेरे को रोक देना, देखो भगवान होकर के कितनी विनम्रता का परिचय दे रहे, कुछ गलती से अगर कुछ गलत निकले तो मेरे को रोकना, बताना तुम लोग मेरे को। फिर आगे बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया जो शुरुआत यहां से हो रही, आप सब लोग गाना इसको। बड़े भांग मानुष तन पावा, बड़े भांग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये 2-3 बातों को आप लोग हमेशा के लिए याद रखना। एक तो हमने वहां कथा सुनाई थी, कामी अर्थी धर्मी मोक्ष और भक्ति जाने वाला, वो पूरी कथा याद आएगी आपको, शायद भूल नहीं पाओगे। ऐसे ही इन 2 बातों को मत भूलना कभी। क्या घटना घटी, राम जी ने राज्य करते हुए 13,000 वर्ष के शासन में एक दिन, वो एक दिन की लीला यहाँ पर तुलसीदास जी ने गाया, इतना ही पढ़ लो बोले बहुत है। 100 करोड़ रामायण का बाद में नंबर लगाएंगे। एक दिन सबको बुलाया और सब लोग आए, नीचे से बड़े तक, किसी ने ऐसा नहीं मैं इतना बड़ा सेठ हूँ या मैं इतना बड़ा गुरु हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों सुनने के लिए जाऊँ, नहीं, सब आए, हम सबको आना चाहिए। सब आए और सबको उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, भाई ध्यान से सुनो, कथा यहां से चालू हो रही, समझ में आया ना। फिर वो कहने लगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुरुआत भाग्य की कह रहे, भाग्यशाली कौन है, भाग्यशाली कौन है, बोले जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, बोले मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, माई वे इज हाई वे, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। हम लोग तो ऐसा सोचते हैं, अपना झंडा ऊंचा गाड़ते हैं, नहीं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाव। अरे पुरवासियों, अरे अयोध्या वासियों, अरे नरो, देखो ऐसा मनुष्य शरीर तो देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता, देवता भी तरसते इसके लिए। देवता भी तरसते हैं जिनको, देवता भी तरसते हैं जिनको, वो मिला जन्म मानुष का तुमको, वो मिला जन्म मानुष का तुमको। आशा संसार की, आशा संसार की, तज दे घरवार की, तज दे घरवार की, फिर ना भुलाना, फिर ना भुलाना, शुभ शाम हरि गुण गाना, शुभ शाम हरि गुण गाना। सीखने को मिलता है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। ये बात किसने बताया, किसने बताया? भगवान राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा, पाई न जेही परलोक संवार। अरे ये बहुत बड़ा साधन है भगवान के धाम को जाने का, वैकुंठ को जाने का। ये मनुष्य शरीर ऐसा साधन है, ऐसे आप वही कर ले कि आप यहां से डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं, इसका सहारा लेके। ऐसा अगर कोई करता है तो वो बड़ा भाग्यशाली है। फिर अभागा कौन है? फिर उसको कैसा करना पड़ता है पता है? वो याद रखना, कह रहे हैं, सो परत्र दुख पावही, सो परत्र दुख पावही। कल उसको रोना पड़ेगा, भविष्य में उसको रोना पड़ेगा, ये शरीर छूटते ही रोना पड़ेगा, बुढ़ापा आते ही रोना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? वो उसको क्या करना पड़ेगा? सिर धुने धुनी पछताए, बोलो, सिर फोड़ फोड़ करके पछताएगा। और फिर क्या करेगा? काल है कर्म है ईश्वर है, काल है कर्म है ईश्वर है। कभी कहेगा मेरे को तो समय नहीं मिला, हमारा तो समय ऐसा नहीं था, हमारा तो वातावरण ही ऐसा नहीं था, या हमारे कर्म ही ऐसे नहीं थे, क्या करें, या दूसरे के कर्मों के कारण हम ऐसे बंधे रहे, या भगवान ने हमें तो बुलाया ही नहीं, ये तो दोष भगवान का है। फिर ये तीन जगह दोष लगाएगा, काल है कर्म है ईश्वर है, काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाए, दूसरों के सर पे मटका फोड़ेगा। इसलिए भगवान पहले ही सावधान कर रहे हैं, अरे अयोध्यापुर वासियों तुम ऐसी गलती नहीं करना, इस जीवन में तुम विषय में मत लगाना। एही तन कर फल विषयन भाई, एही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये संसार में तुम विषयों के पीछे मत जाना, और स्वर्ग में भी अगर चले जाओगे तो वो भी थोड़ी देर का होता है, उसका अंत भी दुखदाई होता है। इसलिए संसार सारा उसी थिएटर के समान है, चाहे यहाँ चले जाओ या स्वर्ग लोक में चले जाओ या ब्रह्म लोक में चले जाओ, थोड़ी देर की चांदनी फिर अंधेरी रात, अंधेरी रात में बार बार भटकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए हम सभी भगवान की शरण में आए और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद। माताजी दक्षिणा दे रही हैं, बोले खत्म करो आप अपनी कक्षा को अभी। कई बार कोई व्यक्ति को घर से बाहर भेजना होता है ना, कोई गेस्ट आते तो उनको सीधा दक्षिणा पकड़ा देते, मतलब अब विदा है आपकी। हाँ हाँ हाँ, बोले अब आपको विदा है, सीधा अब आप विदा दे दी गई, अब आप चले जाइए। तो नहीं नहीं, अच्छी बात है। तो धन्य, क्योंकि बिना दक्षिणा के ज्ञान शिक्षा पूरी नहीं होती ना, इसलिए भी शायद माता जी ने शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। माता जी, अच्छी बात है। तो आप सबका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से जगदीश हरि प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बड़े उत्साह के साथ, मधुर कीर्तन के साथ, कई बार उनको अन्य भक्तों का साथ मिला और कई बार नहीं भी मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली काफ़ी मेहनत किया और अन्य भक्तों ने ही, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, कुछ कुकिंग में, कोई कहीं, कोई कहीं, प्रायः सभी भक्तों ने सब कुछ किया और आप सब लोगों ने इन सब की सेवा को स्वीकार किया। इसलिए भी स्वीकार लोग नहीं करते ना, उसमें भी नाक छाँक निकालते रहते हैं। तो आप लोगों ने सब प्रीति के साथ सब चीज़ों को स्वीकार किया, तो हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, हम आपको इतना समय नहीं दे पाए, लेकिन आप ज़्यादा समय झेल भी नहीं सकते थे हमारा। तो अच्छी बात है, तो बहुत लेट हो रहे हैं, तो हम बहुत आभारी हैं आप सबके और धन्यवाद देते हैं। और हाँ, जो जो हमेशा के लिए रुकना चाहें वो रुक सकते हैं, आपको सारी व्यवस्थाएं आपको हो जाएगी। धन्यवाद। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, भगवान की लीला रामायण ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।